कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे
एक ही तरफ से आवाज आ रही है, एक स्पीकर बंद मत कर दीजिए।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे
श्री बरसाना धाम की, श्री उच्चग्राम धाम की, श्री ललिता देवी की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। सुंदर घड़ी में, सुंदर स्थान में, सुंदर प्रहर में हम ललिता देवी के गांव में आए हैं। ललिता देवी राधा रानी की प्रधान सखी हैं और उसका नाम उच्च ग्राम है, उसको ऊंचा गांव भी कहते हैं। सो सबसे पहले मुझे कुछ दो दिन दिन से बहुत लोगों से कुछ मुझे पूछ रहे हैं कि इसका रहस्य क्या है। तो ये जो है ये बहुत पवित्र चीज है। ये हमारे एक प्रिय स्नेही ब्रिजवासी थे जिनका नाम था मदन मोहन जी ब्रिजवासी, सरनेम ब्रिजवासी। वो कोशी के थे, कोशी जहां पर कृष्ण भगवान ने द्वारका को प्रकट किया। द्वारका धाम में जो गोमती नदी है और समुद्र है वो वहाँ पर भगवान ने प्रकट किया है। और कोशी ये नंद महाराज का कोषागार था, यानी ट्रेजरी, उनका कोष वहाँ पर था, इसलिए कोशी नाम पड़ा। तो वो कोशी में रहते थे और इतने इतने मधुर, इतने मीठे मीठे स्वभाव के थे वो, उतना ही मधुर उनका कंठ भी था और बहुत ही दिव्य गायन करते थे। जितना भी समय उनका जीवन का रहा, युवावस्था से लेकर मृत्यु तक, हर रोज शाम को 6:30 बजे आकाशवाणी में उनका भजन आते थे, हर रोज, एवरी सिंगल डे 6:30 PM। बहुत ही मतलब सीधे साधे और सच्चे ब्रिजवासी थे। और उनका बांस का व्यवसाय था और 2001 साल में हमारे प्रिय गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और हम गोमती कुंड, जो गोमती कुंड के रूप में वहां प्रकट हुई है, उसके जीर्णोद्धार के उत्सव में हम चले गए थे 2001 में, और रत्नाकर कुंड का भी जीर्णोद्धार हुआ उसके बाद में। तो गोमती कुंड जो है वो ब्रजों के जितने भी कुंड है उनके उद्धार में सबसे पहला उद्धार जिसका हुआ है वो गोमती कुंड है। तो रमेश बाबा जी महाराज जो यहाँ पर विराजते हैं मान मंदिर में, उनके ही प्रयत्न से वो गोमती का जीर्णोद्धार हुआ। तो उस उत्सव में जब हम गए थे तो वो कोशी में है, तो मदन मोहन जी के घर पे भी गए थे, तो उन्होंने मुझे एक डंडा और एक डंडा हमारे गुरुदेव को भेंट में दिया। इसलिए मैं जब भी ब्रज में आता हूँ ये डंडा लेकर घूमता हूँ उनकी याद में, क्योंकि वो क्या कहें आपको, इतने महान वैष्णव थे, इतने महान, इतना मधुर मीठा गाते थे। उनका एक विशेष भजन था जो उनको बहुत अत्यंत प्रिय था और वो रोज शाम को इसको गाते थे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। बुहारा करना मतलब हमारी भाषा में झाड़ू लगाना, बुहारी यानी बहुत उच्च भाषा है, बहुत सुंदर भाषा। महल राधिका का बुहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। जब वो सीढ़ियां बुहारेंगे श्री जी महारानी के मंदिर की, तो वहां से राधा कृष्ण गुजरेंगे तो हम उनको देखा करेंगे, झाड़ू लगाते रहेंगे और जब आएंगे तब देखा करेंगे। उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। तो वो रोज गाते थे और जब उनकी उम्र ज्यादा बढ़ गई तो वो मान मंदिर में आके बस गए, मतलब विरक्त होकर सब सदस्य को छोड़कर। उनकी पत्नी भी कैंसर से गुजर गई, हमने उनको कई बार ट्रीटमेंट दिया, मिले उनको बहुत बार, उनके घर में बहुत 50 बार गए हैं। वो मुंबई में आए, उनके दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमने किया, कहते ना प्रेशियस आईज, हमारा भाग्य था उस उन आंखों का ऑपरेशन करना। और उनकी एक रोज वो सीढ़ियों को बुहारी करते थे, रोज, वैसे कल गाते नहीं थे, डेली वो मान मंदिर की सीढ़ियों को बुहारते थे डेली। और उनकी ये जाहिर तमन्ना थी कि ये बुहारी करते करते ही मैं एक दिन शरीर त्याग दूंगी। रोज गाते थे वो, रोज, जब भी झोपड़ी थी वहां पर तभी गाते थे, जब महल बन गया तभी भी गाते थे। तो उनकी ही इच्छा से रमेश बाबा जी महाराज के तरफ से वो ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू हुई 40 दिन की, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, पता नहीं मर जाऊंगा, ब्रज की परिक्रमा करनी चाहिए। तो 89 में उन्होंने परिक्रमा शुरू कर दिया, तब कुछ 500 लोग थे, आज भी वो परिक्रमा चल रही है, अभी समाप्त हो गई 2-3 दिन के बाद, वॉकिंग 40 दिन की, और उसमें आज 15,000 लोग चलते हैं वॉकिंग। तंबू में रहते हैं, टैंकर में स्नान करते हैं, कपड़ा धो के चलते हैं 6 बजे, और 6 बजे से लेकर 12 बजे तक 12 किलोमीटर चलते हैं, 10 से 12 अप्रॉक्सीमेट, फिर वहाँ विश्राम करते हैं, फिर शाम को वहाँ पर कथा होती है, डांस होता है, हरिनाम संकीर्तन में प्रसाद पाते हैं, रात भर उस यात्रा में 24 आवर्स कीर्तन करते हैं, एक मंडली 10x10, चाहे वो चल रहे हो, चाहे वो सो रहे हो, चाहे वो बैठ रहे हो, केवल कथा के समय व्यवधान, पूरा दिन तक उनका 24 आवर्स हरिनाम संकीर्तन चलता है, ऐसे अद्भुत यात्रा है वो। उसमें कई बार भी मैं भी गया हूँ 2-4 दिन 5 दिन, तमन्ना थी कि 40 डेज किया जाए। तो मदन मोहन जी ने भी बहुत साल, हर साल जब तक जीवित थे तब हर साल उसको, उस यात्रा को किया। और मदन मोहन जी की विशेषता थी कि राधा मान बिहारी जी, आपने दर्शन किए? नहीं, आपने नहीं किए दर्शन, क्योंकि राधा मान बिहारी जी भी यात्रा में, दूसरे मूर्ति को रखा गया वहां पर, राधा मान बिहारी जो है वो भी यात्रा में डोल रहे हैं, सर पे उनको धारण करके सब जगह पैदल चलते हैं, अब जहां पर तंबू लगता है वहां पर उनकी सेवा होती है। तो राधा मान बिहारी जी की हर रोज की सेवा वो करते थे, विशेष श्रृंगार करते थे, बहुत सुंदर श्रृंगार करते थे। ऐसे भक्त जो है ना बहुत विरला होते हैं, और ऐसे भक्तों का संग प्राप्त होना ये परम परम भाग्य की बात है। तो 2013 की जो यात्रा थी इनकी कार्तिक महीने की, 40 दिन की वो यात्रा शुरू हो गई थी और वो बरसाने में ही थी। पहले 3 दिन बरसाने में होती है, लोकल बरसाना, फिर डभारा, फिर ऐसे वैसे। तो शरद पूर्णिमा के 2 दिन पहले इनकी यात्रा शुरू होती है। तो शरद पूर्णिमा के पहले दिन यानी कि 18 नवंबर 2013 इस दिन वो लोकल यात्रा थी। तो उन्होंने कहा कि आप लोकल करो, अब मैं अपनी बुआरी करता हूँ। तो सभी जितने भी मान मंदिर के भक्त थे, जितने भी थे ऊपर नीचे वाले सब साधु संत और नीचे माताएं जितने भी थी, सब लोग यात्रा में थे, 15,000 लोग। और मान मंदिर में कोई नहीं था, ये अकेले सीढ़ी पर बुआरी कर रहे थे। वहीं सीढ़ी से उनको कुछ पता नहीं क्या हो गया, किसको पता नहीं, सीढ़ी को बुआरी करते करते वहीं गिर गए और वहीं प्राण छोड़ दिए। राधा रानी ने उनकी इच्छा पूरी की। हो सकता है हार्ट अटैक आया हो, सकता कुछ भी हो सकता है। तो जब सब लोग शाम को मतलब जब भी दोपहर को भोजन करने के लिए लौट के आए तो देखा तो मदन मोहन जी ऐसे उल्टे गिरे हुए थे और प्राण उन्होंने त्याग दिए थे। तो महल राधिका का बुहारा करेंगे, सोने आते जाते निहारा करेंगे। बहुत ही कैसे कहें आपको, बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे। और राधा रानी ऐसी इच्छा जिसकी पूरी करती है। हाँ, जो दिन दिन एक बार गाया गीत उन्होंने और यही तमन्ना रखी कि मैं झाड़ू करते करते ही मैं शरीर छोड़ दूंगा, तो उसी बरसाने की सीढ़ी में वो अपना प्राण त्याग दिया। तो ऐसे भक्त के कोई याद छोड़ेगा क्या? इसको मैं वृंदावन में रखता हूँ और जब भी आता हूँ उसको लेके घूमता हूँ ताकि उनकी कृपा मुझ पर बनी रहे हमेशा, उनकी याद बनी रहे, उनका भाव ऐसा भाव था उनका। एक बार हम लोग गुरु जी उनके घर पे गए थे तो उन्होंने वो कभी भी जब भी कोई भक्त मिलेगा ना तुरंत बाजा लेकर बैठेंगे और चालू करेंगे तुरंत। उनके घर पे कोई भी जाएगा बोले प्रसाद खिलाएंगे बैठे फिर बाद में तुरंत गाना शुरू। तो हमारे एक और गुरु महाराज के गुरु भाई हैं सच्चिदानंद स्वामी महाराज, वो भी हमारे साथ में आए थे और हम भी थे उनके साथ में। तो हमारे भाग्य है, परम भाग्य कि हम गुरु जी का अनुवाद करते हैं इनके लिए, ब्रजवासियों के लिए। ब्रजभाषा बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, तो हम अनुवाद करते हैं, इसलिए हमारा भाग्य हमको सब जगह जाने को मिलता है। तो भोजन किया हमने तो उन्होंने गाना शुरू किया। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। अगर हमारे कान्हा गुलाब के फूल है तो हम राधा रानी कली है। सच बहुत लंबा सुंदर भजन है। उसके एंड में वो कहते हैं कि जो कवि है मतलब वो जो गा रहे हैं कि वो पागलों की तरह वृंदावन के वन में भटक रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि हमारी किशोरी और कान्हा कहाँ हैं। मुझे अभी भी याद है जब उन्होंने आखिरी कड़ी गाई ना तो ऐसे उनका गला भर आया और वो फुट फुट कर रोए हैं इनमें कि जो कवि है वो उसके भाव से कि वो तो गुलाब की कली और जो फूल है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, कब मिलेगा मुझे वो, मैं वन वन में भटक रहा हूँ, कहाँ मिलेगा वो, कहाँ दर्शन होगा राधा रानी और कृष्ण का। साद्भुत विरह भाव में गाया था। उसके बाद बहुत देर तक साइलेंस रहा, कोई किसी ने बात नहीं की, पर रोते रहे फिर संभल गए फिर हम लोग चले गए। और परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इतने भाव विभोर हो गए थे, इतने भाव विभोर हो गए थे कि हम कोशिश से हम लोग बरसाने आने तक वो इतना अपने अनुभव को व्यक्त कर रहे थे कि इतने भाव विभोर होकर उनको देखकर मैं दंग रह गया था। इतने परम संत हैं वो सच्चिदानंद महाराज और ऐसा उनका हृदय हिल गया उधर कुर्सी में जाकर। तो ऐसे हमारे मदन मोहन जी महाराज, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, हरे कृष्णा। फिर आप सोचते होंगे कि हम रोज सजदस के माला वाला पहन के आते हैं मोती की माला, उसका भी रहस्य बता रहा हूँ। कल मैं क्या पहन के आया था, वो पवित्र नरसिम्हा पवित्र, वो मायापुर का महाप्रसाद है। ये सब कृपा के लिए हम पहनते हैं, कृपा होनी चाहिए ना, कृपा के बिना क्या बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी काम कृपा के बिना नहीं होता है। प्रयास तो हम करते हैं और प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास करना हमारा धर्म है। प्रयास के बिना कृपा नहीं होती है, दामोदर लीला भी यही बताती है, अपना प्रयास करते रहो, जब मर्जी होगी तो कृपा हो जाएगी। तो कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। कोई भी कितना भी बड़ा पंडित हो, संत हो, कुछ भी हो, वो कृपा के पेट्रोल पे ही चलता है। बाकी सारा तो अपना ऐसा हाथ पांव हिलाते हैं हम लोग ना, खाली वो उनको कन्विंस कर रहे कि हम आपके रास्ते में है, ध्यान रखो जरा। वो खाली उनका ध्यान रखने के लिए हमारा साधना, हमारी साधना कहाँ तक पहुँचाई हमको। अरे एक चीटी कहाँ तक जाएगी, हाँ एक टिटवी होता ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एक छोटी सी कीटक होता है, वो कहाँ तक आकाश में जाएगा, कितना प्रयास करेगा वो। एक वो चिड़िया थी, वो समुद्र खाली करने से निकली, वो क्योंकि समुद्र ने उसके अंडे निकल लिए थे, वो अपनी चोट से खाली करने चालू कर दिया, मैं खाली कर दूंगी आपको। अरे कहाँ तक खाली करेगी वो लेकिन उसने क्या किया, जब वो प्रयास और निश्चय और संकल्प किया, तो उसके प्रयास और संकल्प और निश्चय से गरुड़ जी प्रभावित हो गए। गरुड़ जी आए, बोले खाली कर दूंगा, तो वो तो कहते गए खाली करने में, एक चोट में खाली कर देंगे, तो तुरंत समुद्र ने लौटा दिए। तात्पर्य क्या है इसका, अरे कोई है क्या यहाँ पर? तो चिड़िया थी, उसने क्या किया, चिड़िया ने केवल अपने प्रयास से, छोटा सा तुच्छ प्रयास से बड़ी शक्ति को आकर्षित कर दिया, और वो केवल जो संकल्प था उसका और प्रयास था, उसके वजह से गरुड़ जी को आह्वान किया, आकर्षित किया, और गरुड़ जी ने जो बोला तुरंत समुद्र ने अंडे वापस कर दिए। हमारा भी ऐसा ही प्रयास है, हम कितना भी पढ़ेंगे, कितना भी रटेंगे, कितना भी पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, वो एक चिड़िया की तरह है, लेकिन कृपा होती है तो फिर अच्छा रहता है, हमारा भी हृदय परिवर्तन, आपका भी हृदय परिवर्तन। तो ये राधा रानी का महाप्रसाद लॉकेट है जिसको हम पहनते हैं यहाँ पर। और भी काफी प्रश्न होंगे तो पूछते रहना, बताते रहूंगा आपको ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हाँ वो देखो कैसा है ना, बिना भक्त की कृपा से कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना इनका। भगवान की कृपा चाहिए तो भक्त बीच में चाहिए। अभी देखो कृपा की बात बताता हूँ तुम्हें, मैं ना 1986 से वृंदावन में आ रहा हूँ। किसी ने मुझे पूछा, हमारे अंकल ने इधर बैठे थे, उठा गए इधर ही, कि आप कितनी बार आए होंगे, 10-15 बार आए होंगे ना। मैंने कहा मैं गिनती भूल चुका हूँ, हो सकता है 100 के ऊपर बार आया हुआ, पता नहीं मुझे अभी कितनी बार आया। 30 साल से मैं कालिया घाट के ऊपर प्रवचन करता हूँ, अनेक अनेक अलग ग्रुप को लेकर जाकर कथा करता हूँ, और 30 साल में मैंने पता नहीं कितनी कथाएं वहां पर की, लेकिन 30 साल तक मुझे एक चीज पता नहीं थी, जो 30वें साल के बाद में जब मैंने एक बार कथा की, तो वहां पर जो कालिया घाट के पेड़ के नीचे जो पुजारी बैठे थे वो बड़े प्रसन्न हो गए कथा सुनकर, एकदम आनंदित हो गए, बोले प्रभु जी आ जाओ वहां से एक चीज दिखाता हूँ। ऐसा लेके गया मुझे, तो पीछे जो पेड़ है विशाल कालिया घाट का कदम का पेड़, उसके पीछे गया और दिखाया, देखो वो देखो अमृत कलश है उसके ऊपर, जो गरुड़ जी ने वहां पर रखा था सबसे पहले समुद्र मंथन के बाद, जब अमृत पैदा हुआ था तो देव दानवों का जो संघर्ष हुआ, खींचातानी हुई, तो गरुड़ जी उसको लेकर उड़े, वो पहले ब्रज में आए, और पहले ब्रज में आकर कालिया घाट का जो पेड़ है कदम का उधर बैठे वो कलश लेकर, और वो कलश की कुछ बूंदे उस पेड़ पे डाली। आज आप देखेंगे वहां पर तो जो कलश है वो पेड़ के लकड़ी में ही बना हुआ है, स्वयं स्फूर्त, स्वयं निर्मित, स्वयं भूत कलश है वो। अभी 30 साल से मैंने कितना लोगों को वहां सब कुछ दिखाया, लेकिन एक भक्त ने दिखाया तो मुझे कलश दिखाई पड़ा, उसके बाद मैंने 50 लोगों को दिखाया उसको हर बार, और इस बार ये भाग्य रहा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को मैंने बताया, महाराज वहां पर कलश है, आपने देखा है? उन्होंने कहा नहीं देखा है। हमने 2 मिनट का हॉल्ट लिया रास्ते में, और अकेले महाराज को मैं लेके गया और दिखाया डंडे से, देखो महाराज वो दिखा आपने कलश, महाराज ने कहा मैंने कभी देखा नहीं, मैंने भी नहीं दिखा था। तो एक भक्त के बिना कुछ चीज दिखाई नहीं पड़ती हमको, भक्त की कृपा होनी चाहिए, भक्त का संपर्क होना चाहिए। तद्विद्धि परिपते न परिप्रश्न न सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्व दर्शन आपको करना है, तत्व क्या है, परम सत्य जो है भगवान, उसका दर्शन करना है तो बिना भक्त के नहीं हो सकता है। तो आपने पूछा कौन दिया, ऐसे किसी प्रेमी भक्त है। हमारे यहाँ पर ना एक छोटी बहन है जो 80 साल की है, तो समझ में आया आपको वो एक माता है यहाँ पर, वो 1950 साल में 16 साल की उम्र में यहाँ पर आई थी, ऐसे ही घूमते घूमते अपने 16 साल के नहीं 14 साल की उम्र में आई थी, छोटी सी उम्र में परिवार के साथ में आई थी। लेकिन राधा रानी ने और बरसाने के वातावरण ने उस छोटी सी कन्या का हृदय ऐसा छीन लिया, ऐसा चुरा लिया कि वो कहीं मैं घर नहीं आऊंगी, मैं यही रहूंगी। लगाया जवानी का जोश है कि क्या है, दो तीन दिन में समझ जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो कुछ दिन छोड़ गए, निकल गए, वगैरह लेने आए, लेने आए। बोला नहीं आऊंगी मैं, मैंने कहा ना नहीं आऊंगी। सुनते अरे तो कितनी बार लेने आए उसको, वो गई नहीं, इधर ही रह गई। और परम पूज्य रमेश बाबा जी के जो गुरु महाराज हैं प्रिया शरण जी महाराज, उनसे उन्होंने दीक्षा ली प्रेम सरोवर पे, और यही रही। आज उनकी उम्र कुछ 83 साल की है और उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, राधा तत्व सार, मेरो प्यारो बरसानो, और बहुत सारी सुंदर सुंदर किताबें लिखी है उन्होंने। और वो भी कहती है कि मैंने कहा आपने कितनी सुंदर किताबें लिखी है, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं लिखी, राधा रानी ने लिखवाई है, मुझे पता नहीं मैंने क्या लिखा है। तो वो एक दिन मैं उनके घर पे भोजन के लिए गया था, तो उन्होंने रोटी किसी घर से मंगवाई, तो मैंने कहा आपको रोटी नहीं बनानी आती। बोले क्या करूँ, जब मैं रोटी बनने सीखने वाली थी उसके पहले ब्रज में आ गई, तो रोटी बनाना सिखा ही नहीं मैंने कभी, अभी भी मुझे रोटी बनाना नहीं आता है। तो उसका भाव ये है, उसका नाम कुसुमलता, भक्ति मती फूल सखी कुसुमलता देवी नाम है उनका, कुसुमलता। और वो हमारे जो डॉक्टर है ना हॉस्पिटल में काम करते हैं आंखों के, उनका नाम गौरांग सुंदर प्रभु है ना, मतलब चैतन्य महाप्रभु का नाम है। मेरा नाम विश्वरूप दास है, वो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम है। तो वो एक दिन आके मुझे बोली कि मुझे राधा रानी ने स्वप्न दिया और स्वप्न ने कहा कि ये जो विश्वरूप दास है वो आपके बड़े भाई हैं और गौरा सुंदर प्रभु जो है वो आपके छोटे भाई हैं, इसी भाव से चलना। वो तो वो आई और ऐसे गदगद होकर गले लगाया और बोले कि आप मेरे बड़े भाई आए हैं। तब से वो रियासत साहब की मेरी छोटी बहन जो है तो मुझे यहाँ पर तो ये उसी ने दिया है। वो जो फगुआ की बात किया ना मैंने आपको, वो जो अंगूठी जो गुम हो गई बाद में, वो भी उन्होंने दी थी मुझे, और हर साल कुछ ना कुछ फगुआ के रूप में देती रहती है। तो मैं कभी कभी यात्रा में से तुरंत धूप में गुम हो जाता हूँ, यात्रा को यहाँ देखो आप मैं आ रहा हूँ जरा, और जाके उनको मिल के आता हूँ। अभी इस वक्त वो डबारे गाँव में है, डबारा गाँव यानी जहाँ पर रत्न कुंड है, रंग देवी का गाँव है। प्रार्थना करो अगर भाग्य हुआ तो वहाँ पर जाएंगे इस यात्रा में, कभी ऐसा शरीर बनेगा पता नहीं है लेकिन जा सकते हैं उस मंदिर में। वहाँ पर राधा रानी और कृष्ण भगवान जो है ना बालक अवस्था में गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे, बहुत सारे गुड्डा गुड्डी वहाँ पर, बहुत सारे चित्रपट हैं, बहुत सुंदर स्थान है, एकदम देहात है पूरा, कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं है, रस्ते वस्ते कुछ है नहीं, थोड़ा चलना पड़ेगा आपको। तो कृपा रहेगी, प्रार्थना रहेगी तो जाएंगे वहाँ पर। और माता जी का डभारा, डभारा लोकल भाषा में डभारो ऐसा है। तो आप लोगों को मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ब्रज में आते ही हम दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, थोड़ा दान देते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो करना चाहिए। लेकिन ना जब तक ब्रजवासियों का भाव हम लोग नहीं पकड़ते हैं तब तक हमारी ब्रज की यात्रा सफल नहीं होगी, क्योंकि ब्रजवासी बड़े विशिष्ट जीव हैं, बहुत ही क्या कहना उसको, बहुत गौरवशाली जन्म है उनका, राधा रानी के खास भक्त हैं, उनको जन्म मिलता है यहाँ पर। और वो कितना भी गुंडागर्दी करेंगे, कितना भी डकैती करेंगे, कुछ भी करेंगे, उनके हृदय के अंदर जो राधा रानी कृष्ण के प्रति प्रेम भाव है ना, वो नष्ट नहीं होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ब्रजवासी, ये मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाई थी कहानी, अतिशय विशिष्ट कहानी है ये। तो कुछ साल पहले, हो सकता है 50 साल 60 साल पहले होगा, तो वृंदावन एरिया में बहुत सारे डाकू रहते हैं, सब ब्रजवासी हैं। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, जो भी ऐसे रहेगा भैया भी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो एक ऐसा खूंखार डाकू था ब्रजवासी, कि वो इतना आतंक कर चुका था, इतना क्रूर, इतना दुष्ट था वो, मतलब उसके करतूतों से, कि पुलिस ने उसको शूट एट साइट ऑर्डर दे दिया था, और इतने इसके बाद भी वो पकड़ में नहीं आया और अपना गुंडागर्दी जो भी है डकैती करता रहा, और एक दिन पुलिस के फायरिंग में आ गया वो, और वो वृंदावन में था उस समय, मंदिरों के आसपास कहीं था, उधर किसी को मिलने आया होगा, उधर पुलिस ने उसको देखा और धड़ाधड़ गोलियां चलाई उसके ऊपर, उस सीने में गोली लगी उसकी, तो उसने क्या किया होगा, ऐसा खून से लथपथ छाते को पकड़ते हुए वो बांके बिहारी मंदिर में गया, और बांके बिहारी के सामने ऐसे हाथ ऊपर किए और प्राण छोड़ दिए उसने, डाकू था वो, समझे आपने। तो मैं इतना दंग रह गया था सुनको सुनकर स्टोरी, अभी इतने पाप किए उसने, उसका तो भगवान देख लेंगे क्या हिसाब किताब है उसका, लेकिन कृष्ण को नहीं भूले वो, इतने भयंकर स्थिति में भी वहीं पर मर सकता था रोड पर वो, लेकिन वो लड़फड़ाते हुए बांके बिहारी के मंदिर में बांके बिहारी के सामने आकर प्राण छोड़ दिए उसने। अभी क्या उसका हम लोग परपोर्ट देंगे उसका, व्हाट आई कैन एक्सप्लेन, किसकी हिम्मत है इसमें क्या एक्सप्लेन करने की, क्या किस बड़े किस सिद्धांत पे और किस तत्वों पे एक्सप्लेन करेंगे इसको, एक ही कह सकते हैं कि हमारी समझ के बाहर है ये सब, यहाँ का हिसाब किताब। इसलिए ब्रिजवासियों को भी दोष देखना नहीं चाहिए, वो कुछ भी करे, जो करना है वो करते रहे, लेकिन हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो बाहर के पतित जीव हैं हम लोग, यहाँ पर बाहर शहरों में पाप करके यहाँ पर आते हैं पाप धुलाने के लिए। वो तो कल हम लोग गए थे ना, किधर गए थे कल हम सबसे पहले, कहाँ गए थे, हाँ मेहराना, तो मेहरानों में जब मैं गया था थोड़े पहले पहुंच गया ना आपकी व्यवस्था करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, तो वहां के लोग ऐसे सिंपल लोग बैठे थे वहां पर, एकदम ऐसे एकदम, मतलब क्या हमारे दृष्टि से वो दिल्ली वाले बंबई वालों से कुछ भी नहीं है, वो ऐसे बैठे थे आराम से बैठकर चर्चा कर रहे थे, महाराज जी भी थे, वो कह रहे हैं देखो क्या कहा उन्होंने, एकदम दिल से कहा सिंपल सी बात, उन्होंने कहा देखो इतने बड़े बड़े बंबई के लोग आ रहे हैं, दिल्ली के लोग आ रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतना पैसा है उनके पास, लेकिन क्या कहते हैं उसको रिक्रिएशन को क्या कहते हैं, मतलब अपने आप को बहलाने के लिए तो यही आ जाते हैं, है ना, इतना पैसा है, इतना सुविधा है, इतना बड़ा घर है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने बड़े बड़े मोबाइल है, बोल रहे थे मुझे 25,000 के मोबाइल पे घूमते हैं, लेकिन मन की शांति के लिए यही आते हैं, तो उनको ऐसा लगता नहीं कि आपके यहाँ जाना चाहिए, आपके जैसा बनना चाहिए, वो अपने आप में शांत और आनंदित है, इतना सुंदर अनुभव हुआ उधर, मैं हमेशा जाता हूँ वहां पर। विशेष बात है कि ऐसे जो ब्रिजवासी हैं वो आपको ऐसे देहात में जाना पड़ेगा उनके लिए, और ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर ऐसे साधु जो है वो भजन करते हैं, जैसे खांडीरवन में जंगल में बहुत साधु रहते हैं, एकदम तपस्वी अवस्था में और दिन रात भजन करते रहते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, बिना साधु की कृपा से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, और केवल एक गुरु नहीं, गुरु तो कृपा अल्टीमेटली कर ही देते हैं, अंतिम कृपा तो उनकी है अल्टीमेट, लेकिन उनके साथ में हजारों भक्तों की कृपा हमको प्राप्त हो रही, बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि कृष्ण भगवान सोचते हैं कि तुम्हें अगर मुझ पर प्रेम करना है और तुम मुझ पर प्रेम करके मेरे धाम में आना चाहते हो, अरे पहले मेरे भक्तों पर तो प्रेम करो, मेरे प्रैक्टिस करो उधर, है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हो कृष्ण का प्रेम चाहिए, कृष्ण पर प्रेम करना है, कृष्ण का प्रेम करना है, सामने जो भक्त मेरे बैठे हैं उन पर प्रेम नहीं कर सकते आप, तो कैसे मुझ पर प्रेम करोगे। तो यहाँ पर जब हम हृदय से भगवान के भक्तों पर हृदय से प्रेम करेंगे, हृदय से चाहेंगे उनको, उनके गुण अवगुणों को दुर्लक्षित करके हृदय से उनको चाहेंगे, तब भगवान कहेंगे ठीक है अभी चलो सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, ऐसा है। इसलिए भक्त पर जिसको विश्वास है और भक्त पर जिसकी श्रद्धा है वही उसी को कृष्ण प्राप्त हो जाता है। अगर आप भक्तों में ही दोष देखेंगे, उनसे झगड़ा करेंगे, उनको ही बोलेंगे ऐसा तुम वैसे तुम, तुम्हारे में ये दोष है तुम्हारे वो दोष है, तो रहो इधर ही दोष ढूंढे ढूंढे। जो जो आपकी प्रवृत्ति है उसको क्या कहते हैं पनाह देने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये पृथ्वी, यहाँ पर आपके कितने दोष हैं, आपको कुछ का द्वेष करना है, किसी को हिंसा करनी है, किसी का और कुछ करना है, काम क्रोध लोभ बदमोह मत्सर को प्रैक्टिस करना है, बहुत बढ़िया जगह है ये, और वो आपको इंटरेस्ट है दोष देखना और दोष निकालते रहना, तो ये बेस्ट जगह है। तो भगवान को यही रहो और यही दोष निकाल कर रहो, मेरे पास क्या काम है आपका। मेरा धाम तो कोई दोष देखने वाला नहीं है, निर्दोष धाम है वो, सबके हृदय निर्दोष है, सबके हृदय निष्पाप है, और वही लोग मेरे पास आ सकते हैं जो सब उनके हृदय निष्पाप है। तो ये सब जो हम लोग जा रहे हैं भक्त में लोगों को सबको लेकर यात्रा कर रहे हैं, आपसे श्रद्धालु हो इसलिए आप लोग को छोड़ के आए, उनको क्या जरूरत है इतने देहात में आने की। बम्बई में रह सकते हैं हम लोग, आराम से गाड़ी में घूम सकते हैं, क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में वो देख सकते हैं, उधर टीवी में देख सकते हैं। तो आप सब लोग छोड़ के सब कुछ ये मट्टी में बैठने के लिए आए, कुछ लोग बोलते हैं इधर बैठना है क्या, अरे इधर ही बैठना है, उधर गाली से बिस्तर में बैठ के तो क्या फायदा हुआ हमारा, कुछ नहीं हुआ, यहाँ बैठेंगे तो कुछ तकदीर खुल जाएगी हमारी। राधा तेरे चरणों में कहीं धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ मैं तुमको तकदीर बदल जाए। अरे तकदीर बदलना तो यहाँ आना पड़ेगा, उधर तकदीर बदलती नहीं है, तकदीर बिगड़ जाती है। आपको लगता है सुधर रही है, बहुत पैसा बढ़ रहा है, लेकिन सब कुछ बिगड़ रहा है मामला, ध्यान रखना इस बात का। तो कितनी बड़ी बात बताई उन्होंने कि मन शांति, हृदय शांति, आत्म शांति के लिए आपको धाम में आना पड़ेगा भगवान के चरणों में, और कहीं भगवान की और कहीं शांति नहीं है। जहाँ भगवान के चरण है, भगवान के भक्तों के चरण है, वहीं पर शांति है। जहाँ भक्तों की सेवा होती है वहीं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भगवान मत भक्ता पूजा व्याधिका, वो कहते हैं मैं मेरी पूजा से प्रसन्न नहीं होता हूँ, मत भक्ता मेरे भक्त की जब पूजा होती तब मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अमेरिका में कैसा है, हम जाओगे किसी के घर में और बड़ा हेलो गुड मॉर्निंग हाय करोगे, ठीक है, लेकिन उसके कुत्ता को चुम्मा दोगे ना तो फिर वो आपका तुरंत दोस्त बनेगा, क्योंकि कुत्ता उसको प्यारा है बहुत। दुर्भाग्य की बात है, अभी क्या है, गाय प्यारी होनी चाहिए, उधर कुत्ता प्यारा हो गया है, ये हमारी संस्कृति है। यहाँ पर गाय को चुम्मा देना है, गाय को गले लगाना है, गाय को चराना है, गाय की सेवा करनी है, गाय को चराने में गर्व मानना है, वहां पर अभी कुत्ता को चराने में सुबह गर्व मानते हैं, है ना, कुत्ता को चराने में गर्व मानते हैं। देखो कितना दुर्भाग्य का समय आ गया। तो अमेरिका जाओगे और कुत्ता को चुमेंगे, हाय पपी हाउ सो स्वीट ऐसे बोलेंगे ना, वो तुरंत आप मालिक आपका दोस्त बन जाएगा। तो प्रिय वस्तु को जब हम प्रिय मानते हैं, किसी के प्रिय वस्तु को हम खुद प्रिय मानते हैं और हमारा प्रेम उसको देते हैं, तो उस व्यक्ति का प्रेम प्राप्त करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों पर प्रेम करते हैं, और अब तुम भक्तों पर प्रेम करोगे तो भगवान आप पर प्रेम करेंगे। जिन पर वो प्रेम करते हैं उन पर आप प्रेम करोगे तो आप पर भी वो प्रेम करेंगे। सिंपल फॉर्मूला है, कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, हम भी अपनाते हैं इसको। एनीवे अभी ऊंचा गांव की बात करें कि नहीं करें। हरे कृष्ण।